आए और कहने लगा यहाँ पे ये लिखी है, यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, यहाँ पे वो बात लिखी हुई है। और देखिए ये तात्पर्य में ये कहते हैं, ये तात्पर्य में वो कहते हैं, और देखिए इससे हमारी सरकार को कितना खतरा है। इतने जोश के साथ, उत्साह के साथ वो भगवद गीता के विषय में उसे बता रहे थे कि वो भक्त सोचने लगा ये केजीबी एजेंट है, ये भक्ति उक्ति कुछ करना नहीं चाहता, लेकिन गीता में इतना उत्साह है इसको, मुझसे अधिक सीरियस ये है गीता पढ़ने में। मैं इतने समय से मंदिर जा रहा हूँ लेकिन मंदिर में जाकर भी गीता मैंने इस तरह से नहीं पढ़ी जैसे इसने पढ़ी है। तो उसे देखकर उसे प्रेरणा मिली कि मुझे गीता पढ़नी चाहिए। यदि ये व्यक्ति शत्रुता के आधार पर गीता को इतनी गंभीरता के साथ पढ़ता है तो मुझे कितना पढ़ना चाहिए। और उस व्यक्ति ने गीता को इस तरह पढ़ी कि आज वो रशिया में सभी इस्कॉन के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं वैद्यनाथ प्रभु। उनको ये उत्साह और प्रेरणा उस केजीबी एजेंट से मिली क्योंकि उन्होंने देखा कि वो कितनी गंभीरता से पढ़ रहा है। इसीलिए कहते हैं जो व्यक्ति भगवान के भक्तों की कृपा प्राप्त करता है केवल वही भक्ति में आगे बढ़ सकता है। प्रहलाद महाराज अपने पिता को यह कहते हैं क्योंकि आप इंद्र तृप्ति से इतने आसक्त हो आपके जीवन में इतना परिवर्तन नहीं होगा। और वो कहने लगे नते विदुर स्वार्थ गतिम हि विष्णुम दुराशया ये बहिरर्थ मानिना। आप जानते नहीं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य है भगवान श्री विष्णु की भक्ति। असली स्वार्थ है विष्णु भक्ति, कृष्ण भक्ति। नते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णुम। और आप पता नहीं किन प्रकार के आशाओं के प्रति आसक्त हो। आपको लगता है शायद इन आशाओं को हृदय में पालकर आप सुखी हो सकते हो। नहीं, अंधा यता नैरुपगीयमाना तेपीश तंत्राम उरुगाम निबद्ध। केवल एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को आगे खींच कर ले जाए उसी तरह आप भी एक के पीछे एक जा रहे हो लेकिन अंततः आपका क्या हाल होगा। मृत्यु को प्राप्त करोगे और नरक लोकों को प्राप्त करोगे। आपको कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर हिरण्यकशिपु को इतना क्रोध आया कि हिरण्यकशिपु जोर जोर से कहने लगे वध्यताम वध्यताम, हत्या की जाए हत्या की जाए, इस उद्दंड बालक की हत्या की जाए कि देखो कैसे मुझे आंखें दिखा रहा है, कैसे उत्तर दे रहा है, तुरंत इसे यहां से लेके जाओ। क्यों सर्वै रूपायैर हन्तव्य सम्मोह्य शयनासन सुहृल्लिङ्गधर शत्रो मुनिर दुष्टम इवेन्द्रिय। ये तो ऐसा ही शत्रु है जैसे किसी योगी की अनियंत्रित इंद्रियां शत्रु होती हैं उस तरह। क्योंकि प्रहलाद मेरे नियंत्रण में नहीं है इसीलिए ये मेरा शत्रु बन गया है। तुरंत इसे ले जाओ संभोज शयनासने, अलग अलग प्रकार से इसकी हत्या करने का प्रयास किया जाए। और प्रहलाद को सारे बड़े बड़े राक्षस बहुत ही खौफनाक वस्त्र पहनकर आए और प्रहलाद को पकड़कर वो दंड देने लगे। प्रहलाद को एक बहुत बड़े पर्वत से फेंका गया, पत्थरों से उस पर आक्रमण किया गया, अस्त्र शस्त्रों से उसे मारा गया, उसके भोजन में विष डाला गया, प्रहलाद के ऊपर योग शक्तियों का प्रयोग किया गया, हर प्रकार से प्रहलाद को कष्ट दिया गया। बड़े बड़े हाथी लाए और हाथी के पैर के नीचे प्रहलाद को कुचलने का प्रयास किया गया लेकिन प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि प्रहलाद नित्य क्रम से अपने हाथ को जोड़े भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। वो भगवान श्री विष्णु को एक क्षण के लिए भी नहीं भूले क्योंकि वो जानते थे कि केवल विष्णु और कृष्ण ही मेरी रक्षा कर सकते हैं और कोई नहीं। इसीलिए सब बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे।
तो इस रफ्तार से हमारी कथा चलती रहे तो रात भर बैठना पड़ेगा रामायण सुनने, तो इसलिए हम कथा को जरा आगे बढ़ाते हैं। बीच में बहुत सा अच्छा प्रसंग तब आता है जब प्रहलाद महाराज शंड और अमर्क के विद्यालय में रहकर अपने मित्रों को अलग अलग प्रकार के उपदेश देते हैं, और उनमें मुख्य उपदेश ये होता है, कौमारम आचरेत प्रज्ञो धर्मम भागवताम यह दुर्लभम मानुषम जन्मे। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और इसीलिए 5 साल की उम्र से ही भक्ति आरंभ करनी चाहिए। इस तरह बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों में श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में एक पूरा अध्याय आता है कि प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को किस तरह से उपदेश देते हैं। उसके पश्चात शंड और अमर्क देखते हैं कि प्रहलाद महाराज के प्रचार से उनके पूरे विद्यालय के छात्र धीरे धीरे भक्ति में रुचि लेने लगे, तो बड़े परेशान हो गए, ये क्या हो रहा है, हम यहाँ पर उन्हें सर्वश्रेष्ठ राक्षस बनाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन ये तो हमारे विपक्षों के भक्त बन रहे हैं। ये देखकर तुरंत प्रहलाद महाराज को लाकर हिरण्यकशिपु के सामने रखा और कहने लगे कि तुम्हारे पुत्र की वजह से जितने भी स्कूल के छात्र हैं, आश्रम के छात्र हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, अपने पुत्र को संभालो। तो हिरण्यकशिपु ने जब ये सुना तो हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया, हिरण्यकशिपु का शरीर कांपने लगा और हिरण्यकशिपु प्रहलाद को देखकर जोर जोर से चीखने लगा। वो कहने लगे, व्यक्तुम त्वम मर्तु कामोसी योति मात्रम विकत्थसे। लगता है प्रहलाद तुम मृत्यु चाहते हो, लगता है इस जीवन में तुम ऊब गए हो और अब मृत्यु को बुला रहे हो। कोई बात नहीं, मैं उसका पूर्ण रूप से प्रबंध करूंगा। यह स्पष्ट है कि तुम मृत्यु चाहते हो क्योंकि तुम इस तरह से मेरे सामने उद्दंडता का प्रदर्शन कर रहे हो। बार बार चेतावनी देने पर भी विष्णु भक्ति का ही प्रचार कर रहे हो, इसीलिए मेरा ये आदेश है कि अब मैं अपने इस हाथ में तलवार को धारण कर आपके सर को धड़ से अलग करूंगा, और मैं ये देखना चाहता हूं गोपायेत हरिस्त्वाब योत्सव इप्सितं सर्वथा, कि जो हरि जिसके विषय में तुम नित्य चर्चाएं करते रहते हो वो हरि तुम्हारी रक्षा करेगा कि नहीं। कस्मात् स्तंभेन दृश्यते, यदि वो सब जगह है क्वासौ यदि स सर्वत्र, कस्मात् स्तंभेन दृश्यते, आप कहते हो कि तुम्हारा वो विष्णु सर्वत्र है सर्वव्यापी है, तो क्या मैं उसे इस स्तंभ में भी देख सकता हूँ? यदि हाँ तो मैं अभी उनका दर्शन लेना चाहता हूँ। प्रहलाद, ये तलवार जो है इससे न केवल मैं तुम्हारी मृत्यु करूंगा, न साथ साथ मैं उस खंभे से स्तंभ से जो भी बाहर निकलेगा उसे भी मैं देख लूंगा। इस तरह जोर जोर से धमकी देते हुए चिल्लाते हुए चीखते हुए हिरण्यकश्यपु अपने हाथ को उस स्तंभ में मारने लगे। जैसे उस स्तंभ पर वार करने लगे, अचानक उस स्तंभ के अंदर से बहुत ही भयंकर ध्वनि निकली, ऐसी ध्वनि जिसका प्रभाव 14 लोकों में पहुंच गया, और 14 लोक में जितने भी प्राणी थे सभी कांपने लगे, और विशेष रूप से सारे देवताओं को लगा कि ये ध्वनि कहां से आ रही है, शायद प्रलय तो नहीं आ गया, ऐसा सोचने लगे। और हिरण्यकश्यपु भी देखने लगा कि ये ध्वनि कहां से आ रही है, इसका स्रोत क्या है। भगवान गीता में कहते हैं शब्द खे पौरुषम नृषु, कि मैं शब्द ध्वनि में निवास करता हूं। तो जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने इस ध्वनि को सुना वो घबरा गया, घबराकर यहां वहां देखने लगा, और तभी उस स्तंभ के अंदर से अचानक विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट के फल स्वरूप हिरण्यकश्यपु के आंखों के समक्ष एक ऐसा अद्भुत दृश्य प्रस्तुत हुआ जो हिरण्यकश्यपु ने आज तक कभी जीवन में कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत रूप था। श्री नरसिंह देव भगवान की। मीमांसमानस्य समुत्थितो ग्रतो नरसिंह रूपं तदलं भयानकं, प्रतप्त चामीकर चंडलोचनं स्फुरच्छताके शरजृंभितानं, करालदंष्ट्रं करवालचंचल स्फुरच्छताके शरजृंभितानं। सबसे पहला दर्शन नरसिंह देव का हिरण्यकश्यपु ने लिया। सोचिए, इतिहास में कभी किसी ने नरसिंह देव का दर्शन नहीं लिया था, लेकिन जब वो नरसिंह देव आए तो सबसे पहले हिरण्यकश्यपु ने देखा। और वो कैसे दिख रहे थे? इन श्लोकों को कहा जाता है उग्र नरसिंह ध्यान। जो उग्र नरसिंह पर ध्यान किया जाता है तो इन मंत्रों के माध्यम से, मीमांसमानस्य समुत्थितो ग्रतो नरसिंह रूपं तदलं भयानकं, नरसिंह देव भगवान हिरण्यकश्यपु के समक्ष आए, समुत्थितो अग्रतो, और बहुत ही भयानक लग रहे थे। हिरण्यकश्यपु स्वयं भी काफी भयानक लगता है, लेकिन नरसिंह देव इतने भयानक लग रहे थे कि हिरण्यकश्यपु घबरा गया। लेकिन भयानक हिरण्यकश्यपु को लग रहे थे, भक्तों को नरसिंहदेव बहुत सुंदर लगते हैं। प्रतप्त चामी कर चंड लोचनम, उनके आंखों से ऐसी ज्वाला, ऐसा तेज निकल रहा था, लग रहा था कि 14 लोक उससे प्रकाशमान हो रहे हैं। प्रतप्त चामी कर चंड लोचनम स्फुरत शता केश जृंबितानम, और उनके सर के बाल और केश इतने सुंदर बिखरे हुए थे और बिखरे हुए अवस्था में प्रतीत हो रहा था मानो उनका चेहरा और चौड़ा और बड़ा हो। तो तात्पर्य में लिखते हैं कि कभी व्यक्ति के सर पर बहुत अधिक बाल हो तो लगता है कि उसका चेहरा बहुत बड़ा है, लेकिन यदि सर पर कोई बाल ना हो तो लगता है चेहरा थोड़ा छोटा है। तो बाल के अधिक और कम होने से इस तरह का फर्क पड़ता है। तो नरसिंहदेव के बाल इस तरफ बिखरे हुए थे तो उन बिखरे हुए बालों को देखकर हिरण्यकश्यपु को लग रहा था कि नरसिंहदेव कितने विशाल हैं। स्फुरत शता केशर झृंभिताननम कराल दमष्ट्रम करवाल चंचल। कराल दमष्ट्रम, इतना भयंकर उनकी दांतें थीं। कराल दमष्ट्रम करवाल चंचल, और उनकी जिह्वा बड़ी चंचल थी और ऐसे हिल रही थी मानो कोई योद्धा तलवार लेकर बहुत तेजी से युद्ध कर रहा हो। हमने तो कलयुग में देखा नहीं किसी को युद्ध करते हुए, लेकिन जब योद्धा युद्ध करते हैं इतनी तेजी से तलवार घुमाते हैं कि वो तलवार दिखता ही नहीं, जब चोट पहुंचेगी तब दिखता है कि कुछ हो गया। तो उस तरह हिरण्यकश्यपु ने देखा कि नरसिंहदेव की जिह्वा इस तरह हिल रही थी तेजी से, और उन्होंने देखा कि उनका गला छोटा और मोटा था और उनकी भुजाएं इतनी विशाल थी और अनेक थी, प्रतीत हो रहा था मानो कोई बहुत विशाल पर्वत खड़ा हो। प्रतप्त चामीकर चंड लोचनम, ऐसे क्रोधित आंखों से हिरण्यकश्यपु को नरसिंहदेव ने देखा, और हिरण्यकश्यपु ने देखा तो उसको लगा कि ये कौन आ गया। लेकिन जो भी हो, चिंता की क्या बात है, मुझे तो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है, ये पशु है या मनुष्य है समझ में नहीं आता, लेकिन जो भी हो मेरा कौन बाल बांका कर सकता है। ये सोचकर हिरण्यकश्यपु अपने हाथ में तलवार लेकर खड़े हो गए। नरसिंहदेव ने हिरण्यकश्यपु को अपने हाथों से ऐसे पकड़ा जैसे गरुड़ देव किसी सर्प को पकड़ते हैं। बड़े प्रेम से हिरण्यकश्यपु को अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ नरसिंहदेव ने अपने हाथों में पकड़ लिया, लेकिन हिरण्यकश्यपु किसी प्रकार से छूट गया, बाहर निकल गया उनके पंजों से। और जैसे ही हिरण्यकश्यपु नरसिंहदेव के हाथों से बाहर छूटकर फिर युद्ध करने तैयार हुआ, ऊपर उपस्थित सारे देवतागण बहुत घबरा गए, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद हिरण्यकश्यपु बच जाएगा, लेकिन वास्तव में नरसिंहदेव तो केवल खेल रहे थे, क्योंकि नरसिंहदेव को लगा कि तुरंत एक एक क्षण में मार दूंगा तो युद्ध का आनंद नहीं मिलेगा, इसीलिए कुछ देर वो खेल कर रहे थे। और उसके पश्चात उन्होंने फिर हिरण्यकश्यपु पर आक्रमण किया, और फिर हिरण्यकश्यपु उनके हाथों में आ गए। तात्पर्य यह है कि कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि हम तो अच्छे कार्य कर रहे हैं, सद्गुणों से भरपूर हैं, लेकिन फिर भी जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन कितने सारे दानव हैं, दैत्य हैं, जो सब नियमों का उल्लंघन करते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते, फिर भी वो ऐश्वर्यशाली हैं, उनके जीवन में कोई समस्याएं नहीं है। तात्पर्य यह है कि हिरण्यकश्यपु कुछ समय तक खेलता है, उसके बाद नरसिंहदेव के हाथ उसे पकड़ लेते हैं और वो कहीं बच नहीं सकता। हिरण्यकश्यपु को नरसिंहदेव ने यूं पकड़ा और जोर जोर से हंसने लगे, और उनके हंसने की आवाज को सुनकर ऐसी ध्वनि हिरण्यकश्यपु ने कभी नहीं सुनी थी। हिरण्यकश्यपु ने अपनी आंखें बंद कर ली, और आंखें बंद करके अपने हाथ में तलवार लिए वो नरसिंहदेव के साथ युद्ध करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन चाहे कितना भी प्रयास करे वो नरसिंहदेव को किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचा पाया। नरसिंहदेव ने अंततः यह निश्चय किया कि ये खेल बहुत हुआ, अब इस खेल को समाप्त करेंगे। उन्होंने हिरण्यकश्यपु को अपनी गोद में लिया और गोद में लेने के पश्चात अपने नाखून को लेकर हिरण्यकशिपु के पेट को चीर दिया। अब देखिए, जो ब्रह्मा जी के वरदान थे वो सारे पूरे हुए, क्योंकि हिरण्यकशिपु नरसिंह देव की गोद में थे, न तो ऊपर थे न नीचे थे। दरवाजे पर खड़े होकर नरसिंह देव ने यूं किया, इसलिए न बाहर थे न अंदर थे, नाखून का प्रयोग किया इसीलिए किसी अस्त्र का शस्त्र का प्रयोग नहीं किया, न कोई जीवित था न मृत था, क्योंकि नाखून को दोनों माना जाता है। और ब्रह्मा जी ने जितनी योनियों की उत्पत्ति की थी उनमें से कोई व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि भगवान स्वयं थे। और संध्या के समय, सुबह भी नहीं था शाम भी नहीं थी, संध्या जब सूर्य अस्त हो रहा था तब। इस तरह ब्रह्मा जी उनके भक्त के सारे नियमों को पालन करते हुए नरसिंह देव भगवान ने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में रखा, और गोद में रखने के पश्चात अपने उन सुंदर नाखून से, नखों से हिरण्यकशिपु के पेट को चीर दिया, और हिरण्यकशिपु के पेट के अंदर की अंतड़ियों को निकालकर अपने गले में सुंदर माला के रूप में रख लिया, और आसपास देखने लगे कि हिरण्यकशिपु के बचाव के लिए दूसरा कोई दानव आता है कि नहीं। बोलो नरसिंहदेव भगवान की। नमस्ते नरसिंहाय। नमस्ते नरसिंहाय। प्रह्लाद लाद दाईने, हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलटङ्खानखलाये, इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो, यतो यतो यामिततो नरसिंहो, बाहे नरसिंहो हृदये नरसिंहो, बाहे नरसिंहो हृदये नरसिंहो, नरसिंह मदीं शरणन्द्रपत्यै, तव कर कमलवरे नथा अद्भुत श्रृङ्गार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम्, केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, तव कर नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे।
नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय नर हरे नर हरे नर हरे जय नर हरे
नरसिंहदेव भगवान की। लेकिन हिरण्यकशिपु के जितने साथी और संगी थे वो संतुष्ट नहीं थे, वो भी अपना उद्धार करवाना चाहते थे, तो उन्होंने तुरंत नरसिंहदेव पर आक्रमण किया। नरसिंहदेव ने देखते ही देखते अपने केवल नाखूनों से उन सबको समाप्त कर दिया, और उसके पश्चात नरसिंहदेव क्रोधावेश में आकर जोर जोर से गरजने लगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनके सामने आए, और उनका क्रोध इतना बढ़ गया था कि जितने देवतागण वहां उपस्थित थे वो भी कांपने लगे। उनको लगा कि यदि नरसिंह देव का क्रोध इस तरह बढ़ता रहेगा तो हमारी खैर नहीं, तो आपस में विचार करने लगे कौन है जो नरसिंह देव के क्रोध को शांत कर सकता है। कोई देवता तैयार नहीं था नरसिंह देव के सामने जाने। लक्ष्मी जी के पास गए, लक्ष्मी जी को कहने लगे आप तो उनके साथ रहती हैं, संगी हैं, कृपा करके आप जाके उनको कुछ कहिए। लक्ष्मी जी ने कहा मैंने ऐसा रूप कभी नहीं देखा है इनका, मुझे हिम्मत नहीं है उनके सामने जाने की। तब प्रहलाद महाराज के पास ब्रह्मा जी गए और कहा कि प्रहलाद जी आप ही हमारी रक्षा कीजिए ना, और प्रहलाद तुरंत तैयार हो गए और नरसिंह देव जी के सामने आकर कहने लगे नरसिंह देव भगवान ये मत सोचो कि सब लोग भयभीत हैं तो मैं भी भयभीत हो जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं है तुम्हारा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस प्रकार एक शेर सिंह अपने छोटे बच्चे की रक्षा करता है लेकिन बाकी जितने भी प्राणी होते हैं उनसे घबराते हैं, उसी प्रकार आप तो हमारे पिता हैं, आपके लिए तो हमारा सारा जीवन है, आपकी रक्षा के आधार पर ही तो हम जी रहे हैं, हम आपसे नहीं घबराएंगे। बस हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि मेरे हृदय के अंदर जितनी भी बुराइयां हो भौतिक इच्छाओं उन सब को दूर कर दो और मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। और ये प्रहलाद महाराज के कई श्लोक हैं सुंदर सुंदर, यन मैथुनादि गृहमेद सुखम हितुच्छम इत्यादि जितने भी श्लोक आते हैं ये सब प्रहलाद महाराज की स्तुति है नरसिंहदेव भगवान के लिए। तब नरसिंहदेव भगवान ने कहा अच्छा प्रहलाद कुछ मांगना हो तो मांगो, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। प्रहलाद महाराज के सर पर नरसिंहदेव ने अपने हाथ रखे, तब प्रहलाद महाराज ने कहा बस मेरी एक ही इच्छा है कि मेरे पिता आपसे द्वेष करते थे, मुझसे भी द्वेष करते थे, और ऐसी अवस्था में उन्होंने देह त्यागा। हम आपसे निवेदन करते हैं कि कृपा करके हमारे पिताजी का उद्धार करो। तो उस समय नरसिंहदेव भगवान कहते हैं त्रिसप्तभिः पिता पूत पितृभिः सह तेन घ यः साधोश अग्रेजतो भवान वैकुंठ कल्पता, कि जो व्यक्ति भगवान का भक्त बनता है तो उनके परिवार के 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। चिंता मत कीजिए, 21 पीढ़ियों का उद्धार होगा तो आपके पिताजी के क्या कहने। लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्रहलाद को कहने लगे नरसिंहदेव भगवान कि अपने पिताजी के लिए आप कुछ श्राद्ध वगैरह कीजिए जिससे उनका संपूर्ण शुद्धिकरण हो, नियम का पालन भी हो और अंततः वो भगवत धाम जा सकें। तो प्रहलाद महाराज ने ऐसा ही किया जैसे नरसिंह देव ने उनसे आग्रह किया, और उसके पश्चात प्रहलाद महाराज को राजा सम्राट नियुक्त किया गया और उनका राज्याभिषेक हुआ, जिसे ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हाथों से किया। तो कहा जाता है कि जो व्यक्ति नरसिंहदेव, प्रहलाद और हिरण्यकशिपु की इस लीला को ध्यान पूर्वक श्रवण करता है या इसका प्रवचन करता है, तो उसका भगवत धाम जाना निश्चित है। हरि बोल। लेकिन कब ये नहीं कह सकते। तो श्रद्धा के ऊपर आधारित है। तो एक बार प्रभुपाद जी अपने शिष्य के साथ बीच के निकट चल रहे थे। उनके शिष्य थे, उनका नाम था ब्रह्मानंद, बहुत ऊंचे थे, 6 फुट 8 इंच के थे। तो अचानक बीच का पानी आया तो वहां पर एक छोटा सा केंकड़ा बाहर निकला। तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा, ब्रह्मानंद पकड़ो, मुझे वो केंकड़ा चाहिए। तो चकरा गए, ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव। तुरंत वो झपटा मारे, क्योंकि पहले वो फुटबॉल वगैरह खेला करते थे तो बहुत दिनों से उन्होंने ऐसा कुछ कार्य किया नहीं था, तो उनको लगा अच्छा मौका है, कूदे, पानी में छपाक करके गिरे। लेकिन जो केंकड़ा था बड़े प्रेम से वापस चला गया पानी के अंदर और बाहर निकले, हाथ पैर मारे, लेकिन हाथ पैर में कुछ नहीं था। प्रभुपाद जोर जोर से हंसने लगे, हा हा हा, देखो 6.5 फुट का आदमी है, एक केंकड़े को नहीं पकड़ सकता। अब प्रभुपाद हंसे तो सारे भक्त भी हंसे, हा हा हा, कि होता ही है, गुरुदेव हंसते तो सारे शिष्य भी हंसते हैं। तो बेचारे अपमानित हो गए। तो अपमानित हुए तो प्रभुपाद ने कहा, देखो इससे सीखो, इतने शक्तिशाली हो, इतने बड़े हो, इतना विशालकाय शरीर है, वो केकड़ा देखो इतना सा है, लेकिन आप क्यों नहीं पकड़ सके? क्योंकि जिसका शरण इस केकड़े ने लिया है समुद्र, वो बहुत विशाल है, केकड़ा बहुत छोटा है, उसके अंदर कोई विशेष बल नहीं, लेकिन समय पर उसने सही आश्रय लिया। विशाल अथाह शक्तिशाली समुद्र का इसने आश्रय लिया, तो तुम भले ही 6.5 फुट के हो, समुद्र के अंदर थोड़ी इसका पीछा कर सकते हो, इतना बल आपके अंदर नहीं है। तो कभी ये मत सोचो तो हमारे अंदर तो कोई बल नहीं, हम तो बहुत ही छोटे हैं होंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अनंत हैं और प्रहलाद महाराज 5 साल के छोटे बच्चे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का उन्होंने आश्रय लिया, और क्योंकि जिसका उन्होंने आश्रय लिया वो बड़े शक्तिशाली थे, अनंत थे, इसीलिए हिरण्यकशिपु जैसा महान राक्षस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो इस तरह इस प्रसंग से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वैसे इस प्रसंग के ऊपर ही एक पूरा सप्ताह किया जा सकता है, 11 दिन केवल 7वें स्कंद का ये प्रसंग 10 अध्याय वाला, वो कभी भविष्य में होगा। तो इस प्रकार के कथाओं से हृदय का शुद्धिकरण होता है, और विशेषकर नरसिंहदेव भगवान भक्ति में जितने भी विघ्न आते हैं उसका विनाश करते हैं, इसलिए कहते हैं विघ्न विनाशक नरसिंहदेव, अर्थात हृदय के अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हैं, इन सभी विघ्नों का वो विनाश करते हैं। तो कहा जाता है कि यदि आपको भगवान से प्रार्थना करनी है तो नरसिंहदेव भगवान से हृदय के काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर और भक्ति में सेवा में आने वाले अड़चनों को दूर करने के लिए प्रार्थना करने से कभी संकोच मत करो, क्योंकि नरसिंहदेव की ये विशेष स्थिति है, उन्हें आनंद आता है भक्तों की भक्ति के जीवन से विघ्नों को दूर करने। इसीलिए नरसिंहदेव भगवान की बड़ी महिमा है, और जो नरसिंहदेव भगवान की कृपा प्राप्त करे वो भक्ति के जीवन में बहुत शीघ्र प्रगति कर सकता है। एक बार यूरोप में एक देश में किताब वितरण हो रहा था, और पास में एक छोटी सी बच्ची, एक भक्त की बच्ची थी, वो रास्ते पर खेलते खेलते अचानक बीच में आ गई, और एक बहुत तेजी से ट्रक आ रहा था, और भक्तों को लगा कि शायद अब इसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि छोटी सी बच्ची है, यहां वहां भाग नहीं सकती। और सारे भक्तगण जोर जोर से नरसिंह आरती गाने लगे, नरसिंह देव भगवान का नाम लेने लगे। और उनके देखते ही देखते वो ट्रक ऐसा प्रतीत हुआ कि बच्ची के ऊपर से निकल गया और बच्ची सड़क के दूसरी ओर दूर जा गिरी। सारे भक्तगण जाकर देखे कि क्या हो गया, और बच्ची को कुछ नहीं हुआ था, हंस रही थी छोटी सी बच्ची। और भक्तों ने पूछा, अरे ये कैसे संभव है, हमने अपनी आंखों से देखा कि ये ट्रक आ रहा था और आपको मार कर ले गया। नहीं, जब वो ट्रक आया तो मुझे लगा कि कोई मुझे उठाकर बगल में फेंक रहा है, और वास्तव में जैसे ही ट्रक मेरे निकट आया मुझे किसी ने उठाया और बगल में फेंक दिया। और फिर भक्तों ने उसकी कमर को देखा तो कमर में पंजों के दो निशान थे। हे नरसिंहदेव भगवान की। तो ये सत्य घटना है जो भक्तों ने एक किताब में लिखी थी। भक्तों के जीवन में ऐसा हुआ, एक बार किताब वितरण का पार्टी किताब बेच रहा था, तब दूर से एक व्यक्ति अपने हाथ में बंदूक लिए उनके प्रति आक्रमण करने आया। वो हरे कृष्ण आंदोलन से बहुत द्वेष करता था, हाथ में पिस्तौल थी और भक्तों के सामने आ रहा था, निकट आ रहा था। भक्तों को लगा अब तो हम भाग नहीं सकते, बिल्कुल पास आ गया, रास्ते के बिल्कुल उस तरफ था, भक्तगण रास्ते की इस तरफ थे, करें तो क्या करें। सब ने जोर से हाथ उठाया और नरसिंह आरती गाने लगे, नमस्ते नरसिंह आया, नरसिंह देव को पुकारने लगे। और कीर्तन सुनकर द्वेषी व्यक्ति और क्रोधित हो जाता है, तो ये सुनकर वो और क्रोधित हुआ और पूरे क्रोध के साथ वो भागता हुआ उनके निकट आया। लेकिन जैसे ही वो सड़क को पार कर रहा था, अचानक एक जोर सा ट्रक आया और इतनी जोर से उसे मारकर गिरा ले गया कि उसकी वहीं तत्क्षण मृत्यु हो गई। और भक्तों ने देखा कि यदि वो ट्रक वहां उस समय नहीं आता तो उनके बचने का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि उस व्यक्ति की आंखों को देखकर लग रहा था कि उसने निश्चय कर लिया कि भक्तों को मारकर ही छोड़ूंगा। लेकिन क्योंकि भक्तों ने नरसिंह देव भगवान को पुकारा, नरसिंह देव भगवान उस समय ट्रक के रूप में आ गए। अर्थात उस समय उन्होंने इस तरह की योजना बनाई कि यो द्वेषी व्यक्ति की वहीं उसी क्षण मृत्यु हो गई। बोलो नरसिंह देव भगवान की। तो ये कोई मनगढ़ंत कथाएं नहीं है, ये सत्य घटनाएं हैं जो हमारे ही आंदोलन में हुई है। और मायापुर में जो नरसिंहदेव भगवान हैं, उनकी लीलाओं के क्या कहने, उसके लिए तो हमारे पास समय नहीं है। चन्नानिवास प्रभु जब आए तो उनकी कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं बता रहे थे, क्योंकि वो सबसे खतरनाक नरसिंहदेव हैं, उग्र नरसिंह। उग्र नरसिंह अर्थात वो जो अभी स्तंभ से बाहर निकले हैं और अभी तक उन्होंने अपना गुस्सा नहीं निकाला है। हिरण्यकश्यपु को मारने के बाद उनका क्रोध थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन पहले जब स्तंभ से निकलते हैं उनकी क्रोध की बिल्कुल चरम सीमा होती है। तो इसीलिए उग्र नरसिंह देव भगवान बहुत ही भयंकर हैं। और जब से उग्र नरसिंह देव भगवान मायापुर मंदिर में आए हैं, तब से डकैतों का आक्रमण उस मंदिर पर नहीं हुआ है। बोलो नरसिंह देव भगवान की। तो इस तरह कई लीलाएं हैं नरसिंहदेव भगवान की। तो अभी हम नरसिंहदेव भगवान के रस से दूर जाते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी के रस की ओर बढ़ते हैं। नवम स्कंद में प्रभु रामचंद्र के विषय में वर्णन आता है, वैसे बीच में एक पूरा आठवां स्कंद रह गया जिसमें पता नहीं कितनी ही लीलाएं हैं। समुद्र मंथन है, वामन देव है, गजेंद्र मोक्ष है, इन सभी लीलाओं का वर्णन करना हो तो पता नहीं अगली बार अगले साल कुछ सप्ताह वगैरह हो तब कर सकते हैं। लेकिन अभी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम प्रभु रामचंद्र जी की लीलाओं पर आते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की। सीता राम लक्ष्मण हनुमान की। तो भारत में रामायण तो बहुत प्रचलित है, और जैसे ही प्रभु रामचंद्र जी की लीलाएं आरंभ होती हैं लोग आनंद में आ जाते हैं। कभी कभी नरसिंह देव भगवान की लीलाएं सुनते समय लोग थोड़ा भयभीत रहते हैं कि अब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि हृदय अपने हृदय में भी हिरण्यकश्यपु मंडरा रहे हैं। तो जब नरसिंह देव का हिरण्यकश्यपु का वध सुनते हैं तो हमें भी थोड़ा डर लगता है। लेकिन प्रभु रामचंद्र जी की लीलाएं बहुत ही लोकप्रिय हैं और गली गली मोहल्ले में रामायण वगैरह तो लोगों ने सुना ही है। तो वैसे हमारे पास समय अधिक नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण लीलाओं के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो प्रसंग हम उस समय का लेते हैं जब प्रभु रामचंद्र जी सीता देवी के साथ और लक्ष्मण के साथ वनवास में रहते हैं और तब पंचवटी में उनकी कुटिया थी और तब हुआ यूं कि रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। यहां से हम प्रसंग को आरंभ करते हैं और देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है। रावण की बहन शूर्पणखा आई और प्रभु रामचंद्र जी के सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। शूर्पणखा के पास ये शक्ति थी जिससे वो अपने रूप को बदल सकती थी, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी के रूप को देखकर वो इतना मंत्रमुग्ध हो गई कि अपना रूप बदलना भूल गई और अपने उसी खौफनाक रूप में प्रभु रामचंद्र जी के सामने गई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि देखो आप कितने सुंदर हो, पुरुषों में श्रेष्ठ आप हो और स्त्रियों में श्रेष्ठ मैं हूँ, तो क्यों ना हम दोनों का मिलन हो जाए। वो कहने लगी कि देखो, ये स्त्री सीता देवी की ओर उंगली करके कहने लगी, आप ऐसे कुरूप स्त्री का संग क्यों कर रहे हो, आप तो कितने सुंदर हो, आपको चाहिए कि मुझ जैसे सुंदर स्त्री का संग करो। तो प्रभु रामचंद्र जी ने कहा, देखो आप जो कह रहे हो बिल्कुल सत्य है। अरे सुंदरी, मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मेरा तो पहले ही विवाह हो गया है, आपकी बातें सच हैं, लेकिन यदि आप मेरे भाई लक्ष्मण के पास जाएंगे तो वह आपके हृदय के सारी इच्छाओं को पूर्ण रूप से संतुष्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अपनी पत्नी के साथ यहाँ नहीं आए हैं, इनके साथ आप विवाह करो, ये उचित रहेगा। तो शूर्पणखा को समझ नहीं आ रहा था क्या करें, तो चले गई उनके पास और वो लक्ष्मण को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। और उस समय लक्ष्मण से वो कहने लगी कि कृपा करके मुझसे विवाह करो। तो लक्ष्मण कहने लगे, देखो आप तो सभी सुंदरियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अभी मैं तो राम का छोटा भाई हूं और राम सभी सुंदर पुरुष में सर्वश्रेष्ठ हैं, तो ये ठीक नहीं लगता कि आप नंबर दो के किसी व्यक्ति से विवाह करें, आपको चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति से आप विवाह करें। तो कृपा करके मेरे भाई के पास जाओ, वो आपके हृदय की इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। तो शूर्पणखा फिर इनके पास आ गई और प्रभु रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को कहा कि देखो ये अब सीता की ओर बढ़ रही हैं और उनको क्षति पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं, तुरंत इन्हें संभालो। और लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काट दी और उस नाक को काट कर उसे नदी के उस ओर फेंक दिया, तो वो जगह बन गया नासिक, जो शूर्पणखा की नासिका जहां गिरी वो स्थान बन गया नासिक, जहां हमारे परमहंस प्रभु प्रचार कर रहे हैं और लोगों का उद्धार कर रहे हैं, हम उस स्थान पर भी जाकर आए थे। तो उस समय शूर्पणखा क्रोधित होकर अपने भाई खर को बुला लाती है और उनका युद्ध होता है, वो भी एक लंबी लीला है। लेकिन कथा को संक्षेप में बताते हुए, वो लंका में आती है और रावण के महल में, रावण जिनके 10 सर और 20 हाथ होते हैं, और रावण को आकर कहती है कि रावण तुम अपने आप को इतना शक्तिशाली मान रहे हो, लेकिन तुम्हारे होते हुए तुम्हारी बहन का क्या हाल हुआ है जरा देखो। रावण ने देखा और उसे बड़ा दुख हुआ, उसने कहा ये किसने किया, किस इस प्रकार का दुर्व्यवहार तुम्हारे साथ किसने किया, बताओ। तो शूर्पणखा ने कहा, देखो राम नाम का एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति है और उसकी बहुत ही सुंदर पत्नी है जिसका नाम है सीता। तुमने अपने महल में कई सुंदरियों को पाला है, लेकिन तुमने आज तक सीता के विषय में नहीं सुना, इसीलिए तुम यहां बैठकर संतुष्ट बैठे हो। वास्तव में एक बार सीता देवी को देखोगे तो फिर कभी दूसरी स्त्री की ओर नहीं देखोगे, इतनी सुंदर है। और धीरे धीरे करके रावण के कान भरने लगी। रावण के हृदय में काम वासना इतनी बढ़ गई कि रावण ने निश्चय किया, अब तो कुछ भी हो मैं सीता का हरण करके ही रहूंगा। और रावण ने अपने निकट के सहयोगी मरीचि को बुलाया। मरीचि को बुलाकर वो कहने लगे कि देखो मरीचि, जाओ और सुंदर सोने के हिरण के रूप में राम का ध्यान आकर्षित करो, जिस समय सीता का हरण कर सकूं। मरीचि ने कहा, राम, वही राम, एक बार जब विश्वामित्र के आश्रम में हमने आक्रमण किया और उत्पात मचाने का प्रयास किया था, उसी रामचंद्र जी ने एक ऐसा बाण चलाया जिससे हम 800 मील दूर जाकर गिरे थे। केवल एक